डिपार्टमेंट के अपने शहर से हर डिपार्टमेंट को मतलब कुछ आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट आज को होते हैं आपको जनरेट रेवेन्यू एंड सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लॉन्च मार्केटिंग एक्टिविटी। इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब भी है इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वी नीड अ रिसोर्स दैट डिपार्टमेंट नीड दैट रिसोर्स एज वेल एंड आई नीड दैट रिसोर्स एंड फॉर बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट इज वेरी नेसेसरी दैट वी गेट द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट आ रही शुरू यहाँ पे प्रॉब्लम जब प्रॉफिट साल के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो हमेशा रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई जी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ने क्यों जाएगा पैसा क्यों वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाएगा तो कुछ पैसा लिए एडवर्टाइजिंग लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट तो हम है वी हैव जनरेटेड द रेवेन्यू दैट्स व्हाट दे क्लेम नाउ दिस इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी तो ये और आपको स्टैंडर्डाइज करनी पड़ती है जो अब जब फैक्ट करते होते हैं फैक्ट करते समझने इंप्लीट करते होते हैं तो वो जो दूसरी डुप्लीकेशन बहुत होती है मैं भी काम कर रहा हूँ भी काम कर रहा हूँ किसी को कोई फॉर्मलाइज चीजें मौजूद नहीं है हर कोई आदमी जैसे भी काम कर रहा है और इससे ज्यादा भी काम कर रहा है इधर जो अगर आपने उसको डिपार्टमेंट में तरीके का डिपार्टमेंट उसको डिवाइड कर दिया तो कुछ भी डुप्लीकेशन जो होगी कम होगी और ज्यादा होगी बहुत ज्यादा होगी अब यहाँ पे वो कॉस्ट किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं उस कॉस्ट की बात कर की वजह से आपकी कॉस्ट नहीं करेगी अगर आपकी फ्लैट स्ट्रक्चर पे डुप्लीकेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट उधर वो कॉस्ट किसी कहते हैं कि कॉस्ट आपकी कम है इधर क्यों कहते हैं वो कॉस्ट ज्यादा होगी इधर इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी कि हर बंदे को मैनेज करने के लिए नीडा पर्सन मेरे दिन फ्लैट सबके लिए लोन नीडा पर्सन लेकिन ओनली वन पर्सन लेकिन लोनों की इंटायर ऑर्गेनाइजेशन क्यों को नेक्स्ट टॉक अबाउट मैट्रिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिखा दिस इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वॉट इज दिस ये एक कॉमन एग्जांपल है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है आपको इसमें ये कौन से डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है आप कहीं पर लेकिन नजर आ रहे कि ये डिविजनल है कहीं पर किसी को नजर आ रहा है डिविजन फंक्शनल स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और कौन से डिपार्टमेंट आपका प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के नीचे क्या आता है बेसिकली प्रोजेक्ट है और ये सिस्टम इंजीनियर है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये मैकेनिकल है अब ये सारे काम होके ये क्या बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा इसके नीचे से भी रिसोर्सेज आएंगी इसके नीचे से भी रिसोर्स आएंगी इसके नीचे से भी रिसोर्स आएंगी इसके नीचे से भी रिसोर्स आएंगी और सब रिसोर्सेज मिलती किस पे काम करेंगी इंजीनियर की एक प्रोजेक्ट अब एट वन पर्टिकुलर टाइम लाइन ही इज इंगेज इन प्रोजेक्ट ए ही इज बेसिकली ऑल्सो रिपोर्टिंग टू दिस मैनेजर इस ओन मैनेजर सिस्टम इंजीनियर के मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा ये और किसको भी रिपोर्ट करेगा ये प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे क्या चीज की वायलेशन नजर आ रही है यूनिटी ऑफ कमांड एक से ज्यादा अथॉरिटी जब ट्राई करती है तो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करें नहीं यू हैव टू रिपोर्ट टू वन ऑन मोर देन वन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम कब सबसे ज्यादा खराबी होगी
कॉन्फ्लिक्ट
अगर अगर ये साहब और ये साहब आपस में मैं चल रही हूँ दे आर नॉट फ्रेंड्स क्या होगा इनके पास भी एक काम है इनके पास भी एक काम अब वो कहते हैं आई हैव टू रिपोर्ट टू दिस प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कहते हैं प्रोजेक्ट तो तुम्हें आगे घर चला जाएगा तुम तो मेरे नीचे हो यू आर माई टीम यू आर अंडर मी दिस इज वेयर प्रॉब्लम क्रिएट लेकिन ऐसा यूजली बहुत स्मूथ ऑपरेशन कर होते आपको रियल लाइफ में इतने प्रॉब्लम नजर नहीं आते लेकिन सिर्फ यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ पे क्या होता है वायलेट होता है ऐसा स्ट्रक्चर बना क्यों क्योंकि हम ये कब करेंगे ऐसा स्ट्रक्चर जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे या एक से ज्यादा तरीके के टास्क होंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और उन सबको मिला के हमारा एक काम जो है वो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो फॉर इंस्टेंस ये बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर हाउस में कॉमन ही आपको नजर आएगा, एयरलाइन इंडस्ट्री में भी कॉमन नजर आएगा आपको। क्यों? इफ आई एम अ हेड पायलट टीम, लेट्स सी एन एयरलाइन इंडस्ट्री पायलट इंजीनियर क्रू और एनऑल। अब एक प्रोजेक्ट रूम के लिए क्या होगा? कोई एक
फ्लाइट,
कोई एक फ्लाइट,
फ्लाइट फ्लाइट
फ्लाइट, उस फ्लाइट में पायलट क्यू मेंबर, उस क्यू मेंबर को भी क्यू हेड जो कर रहे हैं, तो वो यूनिक प्रोजेक्ट है। आपको कॉमन स्ट्रक्चर नजर आता है और आप लोग नजर देखिए कि ऐसी बात नहीं है कि एंड कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट में भी नजर आता है, एंड कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट में भी नजर आते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना तो यू हैव टू जनरेट, अब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपने एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, वो प्रोडक्ट मैनेजर के नीचे जाहिर बात है बंदे आ रहे होते हैं फाइनेंशियल जो के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, जो उसकी पूरी कॉस्टिंग करके देंगे, ब्रेक इवन, नो व्हाट ब्रेक इवन,
नो प्रॉफिट,
नो प्रॉफिट, नो
लॉस, यानी कि किस पॉइंट में कितने यूनिट वो सेल करेंगे, जब जितने यूनिट सेल करेंगे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई प्रॉफिट, सारी चीजें कौन करके देगा? मार्केटिंग है सारा, जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसकी फिजिबिलिटी कौन चेक करके देगा कि कस्टमर विल एक्चुअली अप्रिशिएट दिस प्रोडक्ट, इज दिस द राइट प्रोडक्ट फॉर आवर मार्केट, ये बेसिकली मार्केटिंग की टीम देखती है। और अगर आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट निकाला, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर गेम, और यू आर कंस्ट्रक्टिंग और यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर गेम, तो हो सकता है उसमें मार्केटिंग एफर्ट भी चाहिए हो आपको, फाइनेंस एफर्ट भी चाहिए हो आपको, और वो प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर। अब इस तरह का भी अगर आप काम करें तो नगेन इट्स बेसिकली आर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर गेम। ये चीज हमने सोची थी, वॉट इज दिस मीन्स क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन,
डिफरेंट टीम,
डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट फंक्शन आपस में इंटर डिपेंडेंट, इसीलिए क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। क्लियर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अच्छा ये मुझे बताए, क्लियर अकाउंटेबिलिटी की मुझे कैसे पता लगेगा कि ये गलती इस की है? मैं किसी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात कर रहा
हूँ, मैनेजर
वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केटिंग एफर्ट में प्रॉब्लम, तो जैसे कह रहा हूँ ना मार्केटिंग ही रहती है, तो ये नहीं कहूंगा कि जी फाइनेंस भी रहती है। ब्रेक इवन अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पीपल इन्वॉल्व है, तो उनको कहूंगा उनकी गलती है, कोई मार्केटिंग एफर्ट में गलती आ रही है, कोई रिसर्च गलत हुई, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को अकाउंटेबल करूंगा। तो यहाँ से थोड़ी बहुत क्लियर अकाउंटेबिलिटी हमें ड्यूअल चेन ऑफ कमांड वॉट इज दिस मीन, एक से ज्यादा लोगों को आपको रिपोर्ट देना है, एलोकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट वॉट इज दिस मीन, हर डिपार्टमेंट से आप बंदे चूज करेंगे, तो यू बेसिकली चूज स्पेशलाइज पीपल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, दिस इज व्हाट अ बेसिक स्ट्रक्चर, सिंपल, ओके। उसको एक्सप्लेन कोई करते हैं, ब्रेक्स यूनिटी ऑफ कमांड इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, इज क्लियर टू एवरीवन। मैं अगर आपसे नेक्स्ट वीक एक क्वेश्चन ले लूं सरप्राइज, तो उसमें मैं पूछ लूंगी, एक डायग्राम बना के और नतीजा सही तय करेंगे, आपको नहीं कर सकते आप लोगों को, बेटर देन कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट टास्क एंड एक्टिविटी, क्यों ये अच्छा? ये मैट्रिक स्ट्रक्चर तब बनना चाहिए, मैट्रिक स्ट्रक्चर तब करना चाहिए जब कॉम्प्लेक्स टास्क को और इंटरडिपेंडेंट
स्पेशलाइज्ड पीपल,
क्योंकि हमें वी विल नीड स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स, वी नीड डिफरेंट, क्योंकि हर बंदा हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता, रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं, हर जगह से मैं रिसोर्स को डाल सकता हूँ, कंफ्यूजन एंड स्ट्रेसफुल तब होगा जब मैनेजर जो है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करेंगे, वो स्ट्रेस डालने की जिसके ऊपर वर्कर के बाद होता ही है, मुझे अपने डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे काम है और मुझे अपने प्रोजेक्ट के भी बहुत सारे, देन इट्स मोर कंफ्यूज एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, कहां पे भाई जाएगी पहले टीम बेस्ड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं,
सिमिलर टास्क
और किसी organization when they are going and they go to check these part of this email structure. Like you may have said email structure. Even your game sometimes have a team based structure. The structure with the defining the game can the particular game series part of the team based structure. Everyone is हालांकि इंटरडिपेंडेंट टास्क हैं एक दूसरे के लेकिन एवरीवन वर्क्स एज अ पर्टिकुलर टीम और उसका उसको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो वो एक्सपेक्टेड नहीं होती. इसमें क्या रहता है कि हर काम जो आपको करवाना है ना आपको स्ट्रक्चर बड़ी तरह बनाने ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको कोई काम करवाना है आपने एक टीम बनाई और उसको टीम को मैदान में जाती थी काम करो. तो इससे क्या होगा आप टीम में आपने क्या फायदा होगा तो फायदा क्या होगा इसमें आपको फॉर्मलाइज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है. टीम के सेट ओन लॉन्ग रूल और यदि अटॉर्नी मिल जाएगी अपने तरीके से काम कर सकते हैं बट वी हैव टू अचीव दिस रूल. तो दिस इज बेसिकली अ टीम बेस्ड पर कहीं का नजर आ रहा है कई बार आप उसे देखकर अपने आप एक टीम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द कंपनीज आर बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेसिकली
ज्योग्राफिकली
वर्चुअल है ना ज्योग्राफी के लिए मेरी फैक्ट्री कहाँ मौजूद है नजर आ रही है आपको साउथ कोरिया में. एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहीं और मौजूद है. सेल्स गाड़ी वाला प्रोडक्ट कहीं बेचता हूँ अमेरिका में बेचता हूँ नहीं पता और अमेरिका में मेरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और रिसर्च चलती है चाइना के लोग जो भी आप रीजन है और मैं यहाँ पे स्पीच सेंटर में बैठती इन चारों लोगों को अब मैं यहाँ पे हर फर्म का हर पार्ट का अपना ओन कल्चर होगा अपने ओन नॉर्म्स होंगे अपने मुझे सिर्फ किससे मतलब है आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और बाउंडी लेस ऑर्गेनाइजेशन वेर यू एलिमिनेट जी क्या कहना आई गिव यू ग्रेट एट 7.5
8
में नमाज होगा. स्ट्रक्चर लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टीम बेस्ड स्ट्रक्चर मैट्रिक्स देखिए टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाया कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया मैट्रिक्स में यू हैव टू मेक डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट अपने लोग बना के प्रोजेक्ट के अंदर देगा. क्लियर होगी बात. टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में आपने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया है कोई क्वेश्चन की आपने वर्क स्पेशलाइजेशन की कोई आपने ग्रुप्स टुगेदर नहीं किया. जैसे अगर कोई काम आया आपने काम अनाउंस किया आपने लोगों को उठाया जो जो जिसके आपने बाहर होते थे आपने कंबाइन किया आपने एक टीम बनाई you start saying, okay, you work on your own, there are no standards, you have to define your own standards, you are accountable for this baby, you have to work on it. This is what a team-based structure. A team-based structure can be present in a metric based structure. But every metric-based structure is not a team-based structure. Okay? What's your time for you? Some these problems are इसके अंदर वर्चुअल के अंदर एक खास बात यह है कि आप ज्यादातर अपना काम जो है वर्चुअल और अगर मैं बहुत ही देश की बात करूं कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस है तो एक मेजर डिफरेंस यह है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर काम आप आउटसोर्स कर ज्यादातर काम आपके ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है जो फैक्ट्री है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है. मैं फॉर एग्जाम्पल अगर क्राफ्ट कंपनी की बात करूँ कि
चीज
क्या बनाती है और कोई और चीज आपने देखी क्राफ्ट कंपनी की नहीं और पॉपुलर प्रोडक्ट जो उसका है चॉकलेट बेसिकली प्रोडक्ट चॉकलेट चीज बनाने का कोई प्लान नहीं है। क्राफ्ट ऑस्ट्रेलियन एक फर्म से चीज देती है, सिर्फ वो पैक करती है, अपना लेबल लगाती है। नाउ मेजर काम उसने क्या कर दिया, और आउटसोर्स मेरी नाम चले कंपनी है, वैसे आप वहां से वही चीज आपकी वहां से कॉल लेता है जो उसके डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन चीजें है, सब वहीं से ले रहे हैं। आप दो तीन चीज में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि क्या डिफरेंस है। आप ज्यादा चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट, आप यहाँ नहीं देखते कि कितनी आपकी आप उठाए जाके बाहर जाए मार्टन करके की शर्ट देके हर जगह मेड इन चाइना लिखा। Even not on their own factories. They are not stitching them in their own factories. They used to stitch them in their own factories. They are outsourcing them in their own factories. Levi's wale ki jeans jo hai, wo ek par banti hai Pakistan mein. Nike bhi kehta hai. So this is basically a boundaryless organization, sorry, a virtual organization where you outsource your different tasks. Why do you outsource? You may get cheap labor. हम हमारे पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते, ठीक है जी, या हमारे यहाँ विद इन आवर कंट्री इट इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है जी। ये सारी चीज होती है व्हेन एवर यू टॉक अबाउट एन आउटसोर्सिंग। ओके, क्लियर होगी ये सबके बाद। तब पोलियो में इतनी कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक से मैंने ले ली थी, अमेरिकन पॉलिसी है, तो सर साउथ कोरिया को बीट कर सकते हैं। यूजली ये बिलीव करते हैं कि साउथ कोरियन आर द चीपेस्ट when we talk about, you know, affecting more labor work. Yeah, that's it. Now, it's not that China is more. I don't agree with them, but China is more. Indian species. Pakistani species. We are our Indian species. What is it? Why are we here? Why are we here?
Shoot it.
नबी की एक बात को अभी कहना चाहिए, हम लोग हम लोग में मैं भी और आप लोग भी है, राइट। यही मतलब है कि आप यही सबसे बड़ा झूठ है ना, कुछ नहीं है
सर। नाम बदल की बात करते
हैं, आप तो ठीक है। आप बाउंड्री डेट भी सिंपल है दैट, इसी तरह की है व्हेन देयर इज नो बाउंड्री, टीम बेस्ड काम हो रहा है, डिफरेंट जगहों पे आपकी चीज लोकेट की है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर काम आउटसोर्स में होता है, आपके अपने अंदर चल रहा है, ये सब। ओके, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा ना उससे, अब हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, हर स्ट्रक्चर के पीछे डिजाइन होता है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजाइन, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो बेसिकली कौन सा डिजाइन है, इस तरह का कोई है तो बहुत सारी डिजाइन हो ऑर्गेनिक। तो अब आप मतलब ब्यूरोक्रेटिक करते हैं, मैकेनिक डिजाइन नहीं कर रहे, मैकेनिक क्यों कह रहे हैं, मैकेनिक फॉर्मलाइज है, फॉर्मलाइज है, डिपार्टमेंटलाइज है, मोर फोकस है। मैकेनिक के काम भी बहुत फोकस होती है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है इट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू साइज, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, एडेप्टेशन आसान होती है, इनोवेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा नजर आ रहा है, ये वर्चुअल है, स्ट्रक्चर की बात करो वर्चुअल है, बाउंड्री लेस भी हो सकता है, अगर ये डिपेंडेंट नहीं, यूजली बाउंड्री लेस की वाला होता है, ये क्या कह रहे हैं, वर्चुअल की नजर आ रहा है, डिफरेंट जगहों में इसका मतलब ये कि डिफरेंट जगह है, जिसका मतलब ये कि सेम जगह उसकी शादी होती है, जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग करता हूँ, ठीक है जी, मैं स्टिच करके उसके आगे ब्रांड का नाम लगाता हूँ, अगर अपने ब्रांड को आगे भेज देता हूँ, जिसने ले लिया वो ब्रांड उसका। इफ आई एम डूइंग दिस इज अगेन अ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर संभाल। मेरे पास मैं स्थिति की बड़ी थी ना ब्रांडिंग की, हमारी बात फॉर एग्जाम्पल आई एम लेट्स टेक दिस, फॉर एग्जाम्पल आई एम लिवर, मैंने नई जींस निकाली, लेट्स टेक trying the English spot. This is very naive in figure. मैं रिवाइज कंपनी हूँ लेकिन मैं स्टिचिंग अपनी खुद नहीं करा, मैंने स्टिचिंग करवाई कई बार पाकिस्तान, उससे मैंने पूरी होल की होल लॉट ले ली, अभी जैसे नहीं करा था उसने अच्छी नींद की थी, मैंने क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाई अच्छी नींद मिली सारी
इंस्पेक्शन,
एक नया ब्रांड बनाया स्कॉट्स बाय लिवाइज, ठीक है जी, अपना नाम सिर्फ नीचे डाल दिया बाय लिवाइज या इन कोलैबोरेशन विद लिवाइज, ठीक है जी। अब मैंने कहा भाई लिवाइज ने कहा ठीक है जी, वी आर नॉट गोइंग टू सेल दिस ब्रांड, anybody who wants to buy this brand, take this brand from us and I sell it to some third party. That means stitching ki, that means branding. It's not just bad data. It's a distribution. Ye zaruri nahi bas. Kya ye ek parent company hai jo product banati hai. Isko main import kar lu. Import karke main apne paas aake kisi company ko de diya aur distribute kar. Getting my point? बीच में अथॉरिटी नहीं भी हो सकती है, चारों आपस में भी लिंक हो सकती है, चारों आपस में नहीं भी लिंक हो सकती है, ठीक है। सिर्फ ये बताने का मतलब है बीच में अथॉरिटी भी हो सकती है जो इनको लिंक कर रही हो, ये आपस में भी लिंक हो सकती है, एक दूसरे से लेंगे दूसरी तीसरे से लेंगे, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनिक है, देरोगी बात आपको, हाँ बच्ची आप, मैं आपको ये स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में नहीं दूंगा, पीपीटी फॉर्म में दूंगा, आप लिख के अच्छी स्लाइड बना के हमें पिक कर दीजिएगा, आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे कोर्स का, नेक्स्ट टाइम मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है जी। वाई स्ट्रक्चर डिफरेंस, स्ट्रक्चर आपस में डिफर क्यों करते हैं, वाई हमें कितनी जंग, हमें कितनी बातें करते हैं, इतनी एग्जाम्पल मैं आपको दी कि स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट करता है, क्यों साइज मेरी फर्म छोटी सी है तो क्या मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा, मेरे फर्म में कोई दाम ही नहीं है सिर्फ इम्पोर्ट करती है, तो मैं डिपार्टमेंट लगा के क्या करूंगा, इम्पोर्ट डिपार्टमेंट में मान नो यूज, साइज से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका कौन सा वो है। सेकेंडली टेक्नोलॉजी, जितनी ज्यादा वॉट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज बेसिकली हाउ कंपनी कन्वर्ट इट इनपुट इंटू आउटपुट, अगर मैं फंक्शन वाइज अपने इनपुट को आउटपुट में डिवाइड करता हूँ तो मैं फंक्शन स्ट्रक्चर में जाऊंगा, अगर मेरी टेस्ट डिवीजन वाइज होती है तो मैं डिवीजनल स्ट्रक्चर में जाऊंगा, अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान है तो हो सकता है मैं प्रोसेस मेकिंग स्ट्रक्चर में फिर और उतने ही डिपार्टमेंट में आऊंगा जितने की प्रोसेस है कि मुझे जरूरत है। फिर होगी बस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इन्वायरमेंट से, तो हर 16 के बाद चेंज हो जाती है, तो उसपे मैं कौन से उसपे लूंगा, कौन से स्ट्रक्चर लूंगा, मैकेनिक या ऑर्गेनिक डिजाइन लूंगा,
ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मोर प्रूवन राइट। स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी क्या, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है तो हमने बात करी, कॉस्ट इफेक्टिव किस तरीके से आती है, चेंजेस ज्यादा लेके आनी है नई टेक्नोलॉजी पे जाना है तो मुझे पता है मुझे कौन सा लेना है, इमिटेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन मेजरली मैकेनिस्टिक में होती है, इनोवेशन ऑर्गेनिक में आती है और इमिटेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज कॉस्ट एंड
कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या स्टोरी इस पे मैनेजर
मैकेनिस्टिक में कॉस्ट मिनिमाइजेशन
नहीं आपके पास तो हर लेवल पे मैनेजर है
लेकिन लेकिन उसकी एक बार भी है कॉस्ट मिनिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी द पीपल यू हैव अल्टीमेटली द पीपल इज योर रिसोर्स एंड आपके पास ही है वो लोग आपके पास ही रहेंगे एक्सपर्टीज आपके पास ही रहेंगे कल को तीसरी कंपनी बंद हो गई आपको सप्लायर्स को ढूंढने की जरूरत ही पड़ेगी आपका अपना प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाएगा फिर भी बस क्वालिटी स्टैंडर्ड आप उसके अंदर अपने ही अप्लाई करेंगे आप अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसको नहीं बाउंड कर सकते यहाँ पे वो ये वाली बात है अलग 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 आपको बिल्कुल एंड के लेक्चर में ये बात बताने वाला था कि मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और मैंने यही बात पूछी थी कि कॉस्ट किस क्रम में किस स्ट्रक्चर की रिड्यूस होगी मैंने यही बात पूछी थी आप बताएं कि कॉस्ट किस बेसिस पे रिड्यूस हो जाएगी और किस बेसिस पे इसी स्ट्रक्चर के साथ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज तो इट्स बेसिकली द वे यू अंडरस्टैंड यू विल इंटरप्रेट इट राइट कॉस्ट स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा बंदा एक ही काम करता है, एक बंदा एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, क्या बड़ा उस पर क्या होता है? सेटिस्फेक्शन जो है जितनी ज्यादा स्पेशलाइज काम होगा उतनी ज्यादा, इसी के लिए जो हमने हर ढूंढे थे जॉब इन्वेस्टमेंट, जॉब इन्वेस्टमेंट यही चाहिए। और वर्क स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी से देखें तो फिर इन्वर्स होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है परफॉर्मेंस से, किसी चीज से भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, परसेप्शन का मतलब है सेंट्रलाइजेशन। अगर फर्म ज्यादा सेंट्रलाइज होगी, सॉरी कम सेंट्रलाइज, ज्यादा सेंट्रलाइज होगी तो आपको काम बहुत रूटीन मिलेंगे, एक ही बंदे के पास अथॉरिटी होगी, लोग जो होंगे वो ज्यादा इनोवेशन आगे कुछ नहीं होगा, आपको पता है अथॉरिटी उसी बताएगा। But when you have less authority lying at one end, what will happen? More innovation will take place. You will try to participate in the activity, you will show your performance. You will think that my company, my authority, my decision, my cater karke mere decision ko maanti hai. It gives me great, sound pleasure milta hai aapko. Isse farq ye hota hai ki you try to improve your work as well and you will try to bring up new ideas to the organization. सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, ये बात की हुई थी सेंट्रलाइज है, आपके पास अकॉनमी ज्यादा है तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो गई। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर के पीछे तीन चार चीजों का मेजर रोल है, स्ट्रैटेजी, साइज, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, मिलकर क्या बनाते हैं आपके स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर नहीं बेसिकली क्या है आपके डिजाइन। इन एग्जाम्पल आर आस्क्ड टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज, don't try to mention it's a bureaucratic structure or it's a flat structure or it's a metric structure. Your answer will straight away be wrong. You have to tell me either it's a mechanistic or it's an organic design. And then in organic design you can tell me if I call it. Yes, that's the end for not the class, the structure part. We discuss the structure part, it's very easy, and we discuss it after 15 minutes. 8 बजे में 5 मिनट है, अब तक की ब्रेक
चलिए नमाज के बाद, चाहे सर चाहे नमाज के
बाद।